श्याम बनवारी रावली धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री राधे। हंड्रेड % आवाज नहीं आई अब तक।
जय
जय किसी के पास कोई बैंडेज मलम पट्टी अगर है तो एक भक्त को थोड़ा जख्म हो गया है, किसी के पास होगा तो तुरंत वहाँ पर जाना। हरे कृष्णा। और माताओं को विनती है, अगर आपके बालक पीछे हैं थोड़ा शांति रखने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने शायद आपको बरसाना यात्रा में तीन महासतियों की कहानी बताई थी, फिर दोबारा इसका संबंध यहाँ पर इसलिए थोड़े से में दोहराएंगे इसको। तीन महासतियाँ थी जिनका नाम सुनैना, नैना और कलावती भी था, और कलावती रत्नमाला और मेनका भी था। तो ये वैकुंठ में गई थी भगवान का दर्शन करने के लिए, और उस दर्शन में इतने मग्न हो गई कि चार कुमार आए, सनक आदि चार कुमार, तो उनको दंडवत नहीं किया उन्होंने। वैसे ये मानसी कन्या थी, मतलब इनका अयोनिजा जन्म है। हमारा सबका जन्म योनि से होता है, उनका जन्म मन से हुआ था। बड़ी पवित्र महासतियाँ थी। तो जब सनकादि चार कुमारों ने उनको शाप दिया तो स्वयं विष्णु वहाँ से बाहर आए और उन्होंने कहा कि ये शाप नहीं, आपके लिए वरदान है। वैसे तो आपका पृथ्वी पर जन्म नहीं हो सकता है, आप इतनी महान हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर और दिव्य कार्य करने के लिए आपके अलावा और कोई योग्य नहीं, इसलिए आपको ये अरेंजमेंट किया गया है। तो यथावकाश वो पृथ्वी पर आई, वहाँ पर भी उनका जन्म जो है अयोनिजा हुआ और कलावती का विवाह सुचंद्र महाराज से हुआ। रत्नमाला का विवाह, रत्नावली या रत्नमाला का विवाह जो है वो जनक महाराज से हुआ, और जनक महाराज रत्नावली से कौन का किसका जन्म हुआ, जनक नंदिनी सीता देवी का जन्म हुआ, उनको भी श्री जी कहते हैं अयोध्या में। और मेनका का जो विवाह हुआ हिमालय से, हिमाद्री, तो उनका द्वारा पार्वती का जन्म हुआ। इसलिए राधा रानी, सीता देवी और पार्वती मैटरनल कजिन्स हैं, बिकॉज ये तीनों भी बहनें थी और इनके द्वारा कन्याएं प्राप्त हुई, इसलिए वो युग युगांतर से क्यों ना हो, लेकिन दे आर मैटरनल कजिन्स। फिर सुचंद्र राजा और कलावती देवी ने ऐसे कहा है कि 12,000 साल तपस्या किया, और 12,000 तपस्या साल करने के पश्चात उनको ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, और ब्रह्मा जी ने पूछा राजा सुचंद्र को कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हमें मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष उनको वरदान तथास्तु देने वाले थे, तो बीच में कलावती बोल पड़ी कि अगर इनको मोक्ष दे तो हमारा क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग है ना, अगर ये मोक्ष प्राप्त होंगे तो मेरा क्या होगा, अगर इनको आप मोक्ष देते हो तो मैं आपको शाप दूंगी। तो ब्रह्मा जी इनके शाप से डर गए। तो ये समझने वाली बात ऐसी है कि जो सती पतिव्रता स्त्री होती है उससे ब्रह्मा जी भी डरते हैं, इतनी शक्ति होती है उसके अंदर। सतीत्व जो है स्त्री का वो बहुत महान शक्ति है। वृंदा देवी भी जब सती थी अपने राक्षस पति के प्रति जालंधर, तो जालंधर भी अवध्य हो गया था, कोई मार नहीं सका उनको। जब उनका सतीत्व विष्णु भगवान ने स्वयं भंग कर दिया तब जालंधर की मृत्यु हो गई, तब पृथ्वी जालंधर के आतंक से मुक्त हो गई। और कहते हैं कि जब पुरुष कोई ब्रह्मचर्य पालन करता है, नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य, तो केवल ब्रह्मचर्य के कारण वो ब्रह्मालोक तक पहुंच सकता है, और केवल सतीत्व के कारण स्त्री ब्रह्मालोक तक पहुंच सकती है। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी इनके वचन का आदर किया और तुरंत तथास्तु बोलने से रुक गए। उन्होंने कहा कि आपको परम भगवान की गोलोकेश्वरी जो सखी है, परम सखी, वो कन्या के रूप में प्राप्त होगी, लेकिन वो द्वापर के अंत में होगी, तो टाइम है उसके बीच में अभी, तो मैं मोक्ष वगैरह नहीं देके आपको मेरे धाम में बुलाता हूँ, आप तब तक मेरे धाम में रहो, आनंद लो, यथावकाश फिर पृथ्वी पर आपका जन्म होगा, ऐसे उन्होंने बताया। तो इस प्रकार कलावती देवी और सुचंद्र जी ब्रह्मा लोक में गए हैं, उन्होंने 3 युग तक वहाँ पर निवास किया है। उसके बाद जब द्वापर के अंत का समय आया तो उनका जन्म मुख्य रावली में हुआ, राधा कलावती देवी का कीर्तिदा के रूप में। इनके पिता का नाम इंदुसेन और मुखारा देवी था, और गोवर्धन के राधा कुंड के पास में 1 किलोमीटर के आगे वो मुखाराई गांव है जहाँ पर इनका ननिहाल है। और इंदुसेन महाराज के यज्ञ में कीर्ति देवी प्रकट हुई थी, तो वहाँ पर भी उनका जन्म अयोनिजा हुआ, आम तरीके से नहीं हुआ। तो ऐसी कीर्तिदा देवी बड़ी दिव्य देवी थी, और नंद महाराज भी थे उस समय। तो नंद महाराज एक बार घूमते घूमते गए थे मुखारा गांव में, तो उनकी मुलाकात हुई इंदुसेन महाराज से। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने पूछा ये किसकी कन्या है, इतनी सुंदर तेज पंजे, इतनी सद्गुण संपन्न सुशीला। तो उन्होंने कहा कि हमारी यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है। तो उन्होंने कहा इसके लिए वर नहीं ढूंढा आपने, ना कैसे वर ढूंढ सकते, तो अयोनिजा है, इसके लिए तो ऐसा वर चाहिए जो भी उसके लायक हो। तो मैं सोच रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई वर ही नहीं होगा इसके लायक। नंद महाराज कहते हैं आपने अभी तक बराबर ढूंढा नहीं है, हमारे परम मित्र है वृषभानु महाराज, तो भगवान के परम भक्त हैं, वो तो सूर्य के अवतार थे, भानु सूर्य के अवतार थे, और रघुवंश में उनका जन्म हुआ था। जैसे मैंने आपको बरसाने में बताया था कि दिलीप राजा के कामधेनु के अपराध की वजह से निपुत्र हो गए थे, फिर कामधेनु की सेवा की उन्होंने, फिर उनको पुत्र प्राप्ति हुई रघु नाम की। इसी रघुवंश में प्रभु रामचंद्र का अवतार हुआ है, उसी में वृषभानु महाराज का भी अवतार हुआ है सूर्य के अवतार के रूप में। तो उन्होंने ऐसा वर्णन किया, वृषभानु महाराज का बहुत गौरव किया कि कैसे उनका इतिहास वंश इतना श्रेष्ठ है। तो फिर बड़े धूमधाम से नंद बाबा के प्रेम और आयोजन की वजह से सुचंद्र जो वृषभानु महाराज के रूप में अवतरित होते हैं, इसके बाद में उनका विवाह होता है। इसके पीछे भी एक और सुंदर कहानी है, बहुत सारी कहानी है हरे कृष्णा। सबसे पहले कहानी यह है कि जब पृथ्वी माता रो रो कर ब्रह्मा जी के पास गई थी, ब्रह्मा जी उनको क्षीर सागर किनारे ले गए थे, फिर क्षीर सागर जो विष्णु है वहाँ के, वो इन सबको लेके गौलोक धाम गए थे। ये बहुत अद्भुत कथा है। और गौलोक धाम में जब पहुँचे तो गौलोक धाम में ये जो क्षीर सागर विष्णु थे वो कृष्ण में विलीन हो गए। फिर रामचंद्र जी आए वो विलीन हो गए, नरसिंह भगवान आए विलीन हो गए, वामन देव आए विलीन हो गए, नर नारायण ऋषि आ गए विलीन हो गए। सब देखते हैं, देख रहे हैं सब लोग, देवता लोग, पृथ्वी भी देख रही है गौ के रूप में। तो फिर कृष्ण भगवान ये सब लीला करने के बाद में पृथ्वी को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि हम आएंगे पृथ्वी पर, और बड़ी लंबी लिस्ट बताते हैं कौन कौन क्या क्या बन के आएगा, यहाँ तक कि भीष्म कौन बन के आएगा, द्रोणाचार्य कौन बनकर आएगा, अश्वत्थामा कौन होगा, सब सब बताते हैं, पांडव कौन होंगे, कहाँ से आएंगे। तो राधा रानी खड़ी है वहाँ पर गोलोक में तो मूर्छित हो जाती है। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है, उन्होंने कहा कि फिर उनको होश में लाते हैं हाँ हवा वगैरह देकर। वो कहते क्या हुआ आप मूर्छित क्यों हो गई? उन्होंने कहा कि आपके अभी आने वाले विरह के भावना से मैं व्याकुल हो गई। बोले क्यों विरह कैसा, आप हमारे साथ जाएंगे? बोले नहीं मैं तो आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जहाँ पर श्री वृंदावन नहीं है, श्री यमुना जी नहीं है, श्री गोवर्धन नहीं है, वहाँ पर हम नहीं आ सकते। तो कहते हे प्रिय, आपके इस मंतव्य को पहले से ही जानते हुए मैंने हमारे गौलोक का 84 कोस का एक हिस्सा गिरिराज और यमुना जी के साथ में पृथ्वी तल पर भेज दिया है, श्री वृंदावन धाम की। तब कहते कि हम आने को तैयार हैं, लेकिन हमारी और एक शर्त है, हम जब आएंगे तो बिना आपके किसी को नहीं देखेंगे, बिना आपके आवाज़ के किसी की आवाज़ नहीं सुनेंगे, केवल आपका दर्शन जब होगा तभी आंखें खोलेंगे। बोले ठीक है, ये भी ठीक है। तो यथावकाश जब उसके आगे भी एक पैरेलल कहानी ऐसी है कि हिमालय का जब विवाह मेनका के साथ में हुआ तो पार्वती का जन्म हुआ, तो उनका जन्म की बधाई सब लोग आए कि पार्वती जी कितनी महान सती हैं, 3 महासतियों में से, उनके अन्नपूर्णा के गौरव किया गया, उनकी शक्ति का गौरव किया गया, उनके प्रभाव का गौरव किया गया, उनके गुणों का गौरव किया गया, कैसे वो पृथ्वी को नियंत्रित करेंगी भौतिक जगत को, और सब जगह समृद्धि होगी, यश होगा, कीर्ति होगा इनके माता पिता के घर में। तो विंध्य पर्वत को थोड़ा सा असूया तो नहीं कह सकते, ऐसा एक इच्छा हो कि हमारे घर में भी कोई ऐसी कन्या होनी चाहिए। तो उन्होंने तपस्या किया ब्रह्मा जी से और वरदान में ऐसी कन्या मांगी जो पार्वती से भी श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि उनको 2 कन्या प्राप्त हुई, एक राधा रानी और चंद्रावली। और जैसे ही ये प्राप्त हुई तो विंध्य महाराज जो है वो एकदम समृद्धि प्राप्त कर गए, सब जगह हर प्रकार का भाग्य समृद्धि उनके बस में हो गई। और ऐसा वरदान मिला उनको, क्योंकि उन्होंने क्या मांगा था ब्रह्मा जी से कि मुझे ऐसी कन्या चाहिए जिसका होने वाला पति, देखो कैसा कॉम्प्लिकेटेड वर मांगते हैं मुझे ऐसी कन्या चाहिए जिसको जो योग्य वर होगा वो वर शिवजी को युद्ध में परास्त कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कर दिया, लेकिन तथास्तु करने के बाद में वो सोचने लगे अरे मैंने क्या बोला शिवजी को परास्त कौन कर सकता है, हु कैन डिफीट हिम। तो अभी तो मैं तथास्तु बोल दिया, अगर मैंने ये वरदान पूरा नहीं किया तो मुझे कोई शाप लग जाएगा। तो वो तपस्या में बैठ गए, उन्होंने श्री हरि की तपस्या की श्री हरि प्रसन्न हो गए। मैं आपको सब संक्षेप में बता रहा हूँ, शॉर्ट में। श्री हरि बोले क्या समस्या है? बोला ऐसे ऐसे मैंने वरदान दे दिया है, आज मैं समस्या में फैल गया हूँ। तो बोले तुमने दे दिया समस्या वरदान दे दिया है तो अभी मुझे ही आना होगा, इनके होने वाले तुमको जो कन्या चाहिए उनके होने वाले पति के रूप में मुझे आना पड़ेगा। तो उन्हें कोई बात नहीं मैं आऊँगा। तो ये जो कन्या फिर प्राप्त हुई है विंध्याचल को, राधा और चंद्रावली, उनकी भी ख्याति सब जगह फैल गई कि इनको ऐसा वरदान मिला है कि इनको जो पति होगा इसका वो शिवजी को परास्त करेगा और सारा ऐश्वर्य सारा श्री इनके पास में होगा। तो कंस के कान में ये बात पहुंची। अभी कंस का भी बड़ा इतिहास है, गर्ग संहिता में कंस का इतिहास आ जाता है। कंस ने दिग्विजय किया था चारों दिशाओं में जाकर, और जितने भी राक्षस भगवान ने मारे हैं वो सबको कंस ने बहुत पहले परास्त करके दास बना दिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल तृणावर्त जो है कई लाख किलोमीटर आकाश में कंस को ले गया था, और वहां से कंस ने उसको जमीन पटका था। उसके केवल वन थर्ड डिस्टेंस तृणावर्त भगवान को लेके गया था। इस प्रकार से कंस ने दिग्विजय किया था, बहुत भयंकर। सब नौकर बने उसके, टैक्स के साथ साथ में दास भी। तो उस पर ये खबर पहुंच गई कि उसने सुना था ना कि देवकी के आठवें पुत्र के द्वारा मेरा वध होगा। वो हमेशा वो खोज में था कि ऐसा कोई अलायंस जमा किया जाए जिस समय ये बच सकूं इससे। तो उसके कान में खबर आई कि इनको विंध्याचल को ऐसी कन्या प्राप्त हुई है जिसका होने वाला पति शिवजी को परास्त करेगा। तो उन्हें पुतना को भेजा, बोला जाओ वो दो कन्या को उठा के लेके आओ, वो मेरे पास में होना चाहिए, मैं उनसे विवाह करूंगा। तो ये वर की वजह से मैं शिवजी को युद्ध में परास्त करने योग्य हो जाऊंगा। दिस इज लाइक यू नो वेरी ग्रेट स्पेकुलेशन। कोई एक पति उनका होने वाला है, बोलो मैं बनूंगा तो वो जो पावर है इसके पति होने की वो मुझ में आ जाएगी, ऐसा उसको लग रहा है। तो पुतना जो है वो क्या है ना, तिनका लेकर उसको अभिमंत्रित करती है और वो हवाई जहाज बन जाता है। वो तिनके में बैठकर सब जगह यात्रा करती है, शी इज अ खेचरी यू नो। सो ये आ गई पुतना वहां पर, और आते ही तुरंत उसने ये दो कन्याओं को उठा लिया। तो अचानक विंध्य चौंक गए, अरे ये क्या हुआ। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और तुरंत अनुष्ठान करने को लगाया, बोला मंत्र बोलो और इसको जला दो आकाश में। तो सब ब्राह्मणों ने वहां पर बैठ के मंत्र जब शुरू किया, यज्ञ किया, हवन किया तुरंत, तो वो आकाश में उड़ते उड़ते तपने लगी, इसे जैसे कि जल रही है आकाश में। तो शरीर में इतना आँच उत्पन्न हो गई, इतनी ताप उत्पन्न हुआ कि वो ये दो बालिकाओं को भी अपने हाथ में पकड़ नहीं पाई। तो एक के तो छोड़ दिया उसने, वो गिरी विदर्भ में जहाँ पर आपका नागपुर है आज। विदर्भ राजा भीष्मक के पास पहुँच गई वो, और भीष्मक राजा ने फिर 5 साल तक उसका लालन पालन किया है, और फिर उन्होंने चंद्रभानु जी को उसको सौंप दिया है 5 साल के बाद में, जो चंद्रावली के पिताजी हैं, रिठौरा गांव में रहते हैं वो, उनका वहाँ पर स्थान है। वो भी भानु के परिवार से ही है, चंद्रभानु जी चचेरे भाई हैं वो, बाकी सब सगे भाई हैं, 9 भाई, एक भानु चचेरे भाई है, वो चंद्रावली को प्राप्त करते हैं। तो उनका भी जन्म अयोनिजा हुआ है, राधा रानी और बिंदा के घर पे चंद्रावली का जन्म भी अयोनिजा हुआ है। तो फिर राधा रानी को लेकर उठ रहे उठ रहे उठ रहे, तो फिर आगे उसको भी नहीं पकड़ सकती वो, तो क्योंकि वो वहाँ से वो विंध्य पर्वत से जो महाराष्ट्र में है वो वहाँ से ब्रज के ओर आ रहे थे ना, तो बीच में नागपुर में वो गिर गई, फिर आगे ब्रज में पहुँचे तो इसको भी गिरा दिया। तो वो ये गिर गई कहाँ पर, जहाँ वृषभानु मारा। अभी उसकी दूसरी कथा बता दे, तो अभी इनका विवाह हुआ। तो ऐसे बहुत सारा उपाख्यान कहते हैं उसमें, देयर आर मेनी स्टोरीज कनेक्टेड, आई होप यू आर अलर्ट टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन। तो यहाँ पर उनका जैसे मैंने बताया नंद महाराज के मित्रता और प्रेम से उनका विवाह होता है, फिर वो बरसाने में बस जाते हैं। वशंग राजा उनके पूर्वज हैं, उन्होंने राज्य बसाया है उनके पुत्र के रूप में वंश में वृषभानु महाराज, और वृषभानु महाराज के 4 बड़े भाई हैं, 4 छोटे भाई हैं, एक एक कन्या हैं, वो सब राजा रानी की कजिन्स हैं, अष्ट सखियाँ। तो वृषभानु महाराज और नंद महाराज दोनों को पुत्र पुत्री नहीं होती है बहुत देर तक, तो दोनों मित्र हैं बड़े अच्छे। वो सोचते हैं कि हमको जमुना किनारे पास जाना चाहिए, जमुना किनारा जो है बड़ा पवित्र है, जमुना किनारा में रहने से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, साक्षात भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोनों एग्रीमेंट करके बस जाते हैं, यहाँ मुख्य रावली में वृषभानु महाराज बस जाते हैं, और वहाँ गोकुल में नंद महाराज बस जाते हैं। गोकुल में पर्जन्य महाराज हुआ करते थे, बड़े सद्गुण संपन्न थे वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसके अवतार थे, वो बड़े महान संत थे, वो राजा थे, राज ऋषि, सब सद्गुणों से भरे हुए थे वो। उनका इतना ख्याति था धर्मपरायण होने के नाते, तो उनको 5 पुत्र हुए, उपनंद, और सुनंदा, नंदा, सन नंदन और
नंदन,
नंदन लास्ट, नंदन चाचा, बाकी दो ताऊ और दो चाचा, बीच में नंद महाराज। तो उपनंद बाबा को प्रजनन महाराज राज्य सौंपकर चले जाते हैं। एक उपनंद महाराज बड़े पुत्र होने कर भी नंद महाराज को राज सौंप देते हैं, क्योंकि नंद महाराज इन सब में अति सर्वगुण संपन्न थे, सबको प्यारे थे, पूरे ब्रजवासियों को। तो सब लोगों ने बड़े प्रेम से, आजकल दुनिया में ऐसे होता नहीं है, वो तो दूसरे का हक छीनकर अपना बना लेते, तो अपने को प्राप्त वो हक जो है वो प्रेम से अपने भाई को दे रहे। और सब लोग, नंद महाराज तो संकोच से नहीं बोल रहे थे, सब भाई लोग उनको बनाते हैं, सब ब्रजवासी लोग बनाते हैं, नहीं आपको ही होना चाहिए। तो सबसे ज्येष्ठ पुत्र न होने पर भी नंद महाराज राजा बन जाते हैं। तो फिर दोबारा वो नंदगांव से नंद महाराज यहीं पर आकर गोकुल में रहने लगते हैं। और यथावकाश आप जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान का मथुरा में जन्म होता है, फिर उनको जमुना पार करके, जमुना जी में आते ही पहला स्नान करके भगवान गोकुल में आ जाते हैं, जानते हैं ना। वसुदेव महाराज जा रहे थे, कोयलो कोयलो लाला को ले लो, कोयलो कोयलो, वहाँ पर एक घाट है कोयलो घाट, यहाँ पर उन्होंने पुकारा था कोयलो कोयलो, समबडी टेक माई चाइल्ड। तो वो गिर गए थे जमुना जी में, तो उनको खोजना पड़ा, खोज के निकाला। सबसे पहले जमुना जी को अंग संग दिया उन्होंने, और जमुना जी को चरणामृत बना दिया, फिर वो गोकुल में आए। तो वहाँ वैसे उनको कृष्ण की प्राप्ति हुई, अगले दिन नंदोत्सव मनाया गया। और यहाँ पर विश्वभानु महाराज, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये मुख्य रायबली का क्षेत्र है, यहाँ पर जमुना जी बड़ी पास में है। अभी तो जमुना जी का जो प्रवाह है वो यहाँ वहाँ दूर गया हुआ है, अलग जगह पर है। अभी तो 20 साल में भी इसका प्रवाह चेंज होते हुए हमने देखा हुआ है, तो वो बहुत पहली बात है। तो इनके घर के पास से जमुना जी बड़ा विशाल पात्र से बहती थी, और इनका अपना कुंड था जमुना जी के अंदर, विश्वभानु कुंड सरोवर। तो हर ही सुबह उठकर वो भोजन करने के लिए, भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए अपने कुंड में स्नान किया करते थे। तो जिस दिन, ये कम से कम एक साल की बात है, इट इज सेड दैट 360 माइनस 15 कितने हो गए, 345 डेज अप्रोक्सीमेटली। इतने दिन के बाद भी ये लीला हुई कि वहाँ से उनको उठाया और पूतना डाल दी गई। तो उस दिन यहाँ पर वो गिरी, उस दिन क्या दिन था, श्रावण शुद्ध अष्टमी का दिन था, राधाअष्टमी। उस दिन विशाखा और चंपकलता का जन्म भी हुआ है। तो उस दिन सुबह निकले अपने कुंड में, तो बहुत प्रकाश दिखाई पड़ा उनको, इतना दिव्य प्रकाश, सुनहरा तो कभी दिखाई नहीं पड़ा, इतने सुबह अंधेरा होता है। तो वो गए, पास में गए, देखा तो ये प्रकाश जो है एक अनंत पंखुड़ियों वाला कमल से आ रहा है। और पास आते तैरते वो देखते, तो वो कमल से भी नहीं आ रहा है, उस हजारों अनंत पंखुड़ियों वाले कमल के बीच में एक सुंदर कन्या है, जितनी हजारों सूर्यों की कांति और आभा उसके अंदर से निकल रही है। तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते, और वो कहते हैं अरे ये कैसे हो सकता है। उतने ब्रह्मा जी उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में सुचंद्र और कलावती के रूप में 12,000 साल तक बहुत घोर तपस्या की थी, और भगवान की परम सखी, परम शक्ति, आदि शक्ति गोलोकेश्वरी अपनी कन्या के रूप में पाने की इच्छा भी प्रकट की थी, वही ये कन्या है। तो मतलब वो भी अयोनिजा, हाँ, नॉट इन द नॉर्मल वे, इन अ वेरी डिवाइन वे वो प्रकट हुई वहाँ पर। अभी आप इनको घर ले जाओ और अपनी कन्या के रूप में इनका लालन पालन करो। तो बड़ी खुश होकर घर ले जाते हैं, कीर्ति मैया को दिखाते हैं, वो बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन खुश भी है और नहीं भी खुश है, इतनी खुशी हो रही है कि इतनी सुंदर जिसके कोमल कोमल अंग है, उसके हर एक अंग से स्वर्ण की आभा निकल रही है, इतनी सुगंध निकल रही है, इतनी कमल जैसी उसकी आंखें हैं, लेकिन बंद है, ना रो रही है, ना देख रही, ना कुछ कर रही है। तो उत्सव मनाए कि नहीं मनाए, मनाए कि नहीं मनाए। तो नारद मुनि जी उस समय एक जगह बैठकर गणित कर रहे हैं। नारद मुनि बहुत त्रिकालदर्शी संत हैं, भगवान के, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वो गणित लगाते हैं कि अभी भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ है, तो चार्ट डालते हैं उसका, ज्योग्राफिकल गूगल मैप, उसमें नोट करते हैं कि यहाँ पर इस स्थान पर यह प्रकट हो गई होगी। तो वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर कोई कन्या का जन्म हुआ है, इनके घर में आकर, तो ये बड़े संकोच में रहते उस समय के भी, कैसे बताएं एक दूसरे से, बालिका का जन्म हुआ है लेकिन अंधी गूंगी और बहरी है, तो कैसे उसको बताएं सबको कि बाय द वे हमारी कन्या जो है वो ऐसे ऐसी है। तो वो बोलते हैं कि नहीं कोई नहीं कन्या, आप कुछ संतान भी है यहाँ पर? हाँ हाँ एक पुत्र तो है। तो सुदामा को आगे करते हैं, तो नारद मुनि बोलते हैं मेरा गणित कैसा गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि दोबारा बनाऊंगा गणित उसको, और जाने लगते हैं। उतने में विश्वानु महाराज कीर्ति मैया चर्चा करते हैं, अरे साधुओं की कृपा से क्या नहीं हो सकता है, साधु भगवान भगवान के बड़े प्रिय भक्त होते हैं, साधु के वचन के लिए भगवान कुछ भी करते हैं, इसलिए इनका आशीर्वाद मिला तो शायद हमारी कन्या की आंखें खुल जाए और बोलने और सुनने भी लगेगी। तो गए हुए साधु को फिर सखियों को बोलकर दोबारा बुलाते हैं, है कन्या का जन्म हुआ है, वो भाग के आते हैं तुरंत और अंतपुर में लेकर जाते हैं। वहाँ पर सुंदर पल्ले में श्रीमती राधिका विराजमान रहती है। वो कहती है कि कन्या तो है लेकिन समस्या ऐसी है कि इनकी दृष्टि नहीं, बोली नहीं, कुछ नहीं। बोले कोई बात नहीं, मुझे इसकी समस्या का समाधान पूरी तरह पता है, आप इसका जन्मोत्सव की तैयारी करो, बस कुछ मत सोचो अभी। और सबको वो जन्मोत्सव की तैयारी का बड़ा प्लान देते हैं, बोले जाओ सब लोग तैयारी करने लगो, क्योंकि नारद मुनि को राधा रानी को एकांत में मिलने की इच्छा होती है। तो विश्वानु महाराज कीर्ति मैया सब चले जाते हैं, नारद मुनि अकेले श्री जी के साथ में, और नारद मुनि को श्री जी महारानी इतने बालिका स्वरूप से तुरंत 16 साल की बालिका का दर्शन देते हैं, 16 वर्षीय कुमारी का दर्शन देते हैं, और नारद मुनि वहां पर तुरंत बेहोश पड़ जाते हैं, आनंद का भाव विभोर होकर वहां पर बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं नारद मुनि इनको कि हमें आपके अष्ट सखियों के साथ दर्शन करने की इच्छा है। तो राधा रानी कहती है कि आप कुसुम सरोवर चले जाओ, वहां पर आपको मेरे अष्ट सखी के साथ दर्शन होंगे। तो नारद मुनि वहां पर बेहोश होते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते उठते हैं, नाचते हैं, बोलते हैं, भाव विभोर, अश्रु, कंपन, गला गदगद होना, ये सब का अनुभव करते करते कब कुसुम सरोवर पहुंचते हैं पता नहीं चलता है उनको। जब कुसुम सरोवर पहुंचते हैं तो माधवी गोपी और वृंदा देवी उनको मिलती हैं, और वो उनको हाथ पकड़कर कुसुम सरोवर के दक्षिण कोने में स्नान कराती है, और वहां पर स्नान कराने के बाद नारद मुनि को गोपी शरीर प्राप्त होता है, नारद ही या गोपी। फिर वो उनका श्रृंगार करती है दोनों मिलकर, और कुसुम सरोवर में एक अदृश्य रास मंडल है, एक ब्रिज है उसके अंदर, उसके बीच में कमल दल है, आपने वो सुना है ना, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर नोहार। बोलिए वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहार। तार मध्य हेमा पीठ अष्टदल वेष्टित अष्टदल प्रधान नायिका तार मध्य हेमा पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। ऐसा सुंदर दृश्य है वहां पर, सुंदर कमल लगा हुआ है बहुत सुंदर, उसकी अनंत हजारों पंखुड़ियां हैं, बीच में जो होता है ना वर्ल केंद्र स्थान, उसमें रत्न सिंहासन है, उसमें राधा और कृष्ण विराजमान है, राधा के साथ श्याम सुंदर जी बड़े शोभायमान लग रहे हैं, और 8 पंखुड़ियां मेन है उसमें, 8 सखियां खड़ी हैं, वो गीत गा रही है, वाद्य बजा रही है, अलग अलग सेवाएं कर रही है। उसके बीच में वृंदा देवी नारदीय गोपी को ले जाती हैं रत्न सिंहासन के पास, और नारद के हाथ में, नारदीय गोपी के हाथ में चमरा देती हैं, और वो ढुलाने की सेवा करते हैं। क्या कहते हैं वो, चमर ढुलाया कबे हेरी भो मुख चंद्र, चमर ढुलाते हुए श्री मुख का दर्शन करते हैं राधा और श्याम सुंदर जी का, बहुत देर सेवा। तो वहां पर उनको अष्ट सखियों के साथ में नारद मुनि को दर्शन होता है। राधा रानी उनको आदेश देती है कि आप यहीं रहो और मेरे पंचरात्रि की विधि का लेखन करो। तो वो कहते हैं मुझे तो शाप है दक्ष राजा का, 3 दिन के ऊपर मैं कहीं रह सकता नहीं हूँ। उन्हें कहा वो शाप जो है लौकिक जगत में है, इन द मटेरियल वर्ल्ड वेयर बर्थ एंड डेथ प्रिवेल, दिस इज माई होम, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू लाइक, जितनी मर्जी आप रह सकते हो, यहाँ पर कोई शॉप वॉप दक्ष का लगता नहीं है। नारद मुनि बड़े खुशी से गए हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। वहां पर रह के नारद कुंड वहां पर है कुसुम सरोवर के आगे 1 किलोमीटर, वहां पर बैठ के भजन करते हुए उन्होंने नारद पंचरात्रि की विधि का लेखन किया है। और यहां पर फिर जिन्होंने अरेंज किया था, फिर अरेंजमेंट होता है बधाई का, बधाई मतलब जन्मोत्सव का, राधा रानी के जब बधाई होती है ऐसा वर्णन आता है कि उसमें लक्ष्मी देवी, सरस्वती, पार्वती और जितनी अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी, सभी लोग अलग अलग भेष धारण करके आते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, सब लोग आते हैं, हाँ, अलग अलग भेष धारण करके आते हैं दर्शन करने के लिए, राधा रानी का दर्शन करने के लिए। और उस समय सब लोग गीत गाते हैं, सब लोग गोपियाँ सज धज के आती हैं और कुमकुम, अगरू, हल्दी सब लेके आते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं मक्खन, दही, प्रेम के मारे सब ग्वाल बाल एक दूसरे को स्वागत करते हैं और बहुत खूब गाना गाते हैं। उसमें इतने लोग इकट्ठा होते हैं कि कौन किसको पुकारे और कौन पूछे कि आप कौन हो, ऐसे भी स्थिति नहीं है। इससे सची माता के समय में भी गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ था निमाई का, तब भी सची माता को दिखाई पड़ रहा था कि कुछ कुछ औरतें और आदमी यहाँ के नहीं है, दूर से आए हैं, लेकिन कैसे पूछेंगे भाई आप कौन हो, कैसे आए मेरे घर पे, ऐसे तो बोल सकते नहीं ना। तो वो दर्शन कर रही सबका, अद्भुत लोगों का, वैसे ही कीर्ति मैया वृषभानु में सबका दर्शन कर रहे थे। लेकिन कोई झाड़ू वाली बनकर आई है, कोई फूल बेचने वाली बनकर आई है, कोई और कुछ बनकर आई है, सब देवी देवताएं। हाँ, तो श्री जी महारानी का तो गौलोक वृंदावन में 16 वर्षीय रूप में दर्शन है, बाल रूप में तो केवल पृथ्वी तल पर दर्शन होता है। उसी के लिए नंद के घर में शंकर भगवान गए थे बाल रूप का दर्शन करने के लिए, कृष्ण भगवान का, वैसे ही सब लोग वहां पहुंचे थे। तो वृषभानु महाराज ऐसे कहते जय श्री जी का जन्म होने पर अचानक जो गरीब लोग थे उनके घर में हलवा पूड़ी तैयार हो गई अपने आप ही, एकदम जो फटी चढ़ते एकदम धनवान बन गए। हाँ, सभी ब्रज में जितने भी भिक्षुक लोग थे सभी एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आने लगे, उनको पता नहीं चल रहा कहाँ से कपड़े आ रहे, कहाँ से हलवा पूड़ी आ रही है, श्री जी का जन्म हुआ है इसलिए आ रहे। तो इसलिए जब वो वहां पहुंचते हैं वृषभानु महाराज इतने खुश हो जाते हैं। तो नंद महाराज ने, नारद मुनि ने कहा होता है कि देखो ये उत्सव के अंदर जो मैंने योजना बनाई है उसमें एक योजना बहुत महत्वपूर्ण है, वो नंद बाबा को आमंत्रण देना है आपको और कृष्ण बलराम को साथ लेकर रोहिणी और यशोदा मैया को भी बुलाना है आपको, तो वो भी आते हैं, उनका भी स्वागत होता है, बड़ी धूमधाम से बधाइयाँ गाए जा रहे हैं, भाट लोग गीत गा रहे हैं, सब संगीत बज रहा है, लोग नृत्य कर रहे हैं, अप्सराएं भी सामान्य स्त्रियाँ बनकर वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, सब लोग श्री जी के जन्म का आनंद ले रहे हैं। जहाँ पर किसी को आम तौर पर एंट्री नहीं है ये उत्सव का लाभ लेकर सब लोग एंट्री ले रहे हैं, सभी देवी देवताओं को किसी को एंट्री नहीं है यहाँ पर ब्रजधाम में, सब लोग प्रवेश कर रहे हैं, चांस ले रहे हैं, चांस, चलो भाई आज फ्री टिकट है आ जाओ दर्शन कर लो। तो उतने में फिर कीर्ति मैया, नंद यशोदा माई सब लोग बातें करने में लगे लगते हैं, वो रेंगते हुए बालक कृष्ण बलराम जो है रेंगते 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 अंदर चले जाते हैं अंतपुर में, यहाँ पर राधा रानी को पलने में विराजमान किया है। तो 2-3 उसके अलग अलग वर्णन दिए गए हैं, एक ऐसा दिया कि जैसे ही कृष्ण भगवान उस कक्ष में प्रवेश करते हैं तुरंत राधा रानी रोने लगती है क्योंकि उनके नाक में कृष्ण भगवान के शरीर की सुगंध आती है, अपने प्रियतम का सुगंध तो पहचानती है, तुरंत अपने आंखें खोलकर रोने लगती है। दूसरे में ऐसा वर्णन आया कि कृष्ण भगवान जैसे जाते हैं रेंगते हुए घुटने के हाथ के बल पर और पलने को पकड़कर, जैसे बच्चा खड़ा होता है ना वैसे वो पकड़कर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर फिर हाथ लगाते हैं उनको, जैसे उनका स्पर्श दिव्य होता है, राधा रानी आंखें खोल लेती है और रोने लगती है। तीसरा एक वर्णन ऐसा है कि कीर्ति मैया के आग्रह के खातिर यशोदा माई ने कृष्ण को राधा रानी के साथ चुला दिया पलने में और जैसे श्री अंग का स्पर्श हुआ तुरंत कृष्ण भगवान के स्पर्श से राधा रानी रोने लगी। बोलो राधा रानी की, कृष्ण भगवान की। तो इसके बाद में आप जानते हैं वसुदेव जी बड़े चिंतित थे कंस के भय से कि 8वां पुत्र तो चला गया है गोकुल में, जानते हैं वो रहस्य है, तो गर्गाचार्य को भेजते हैं। गर्गाचार्य जो है आसुरी मुनि थे, उनका अवतार है वो, बड़ी सुंदर कथा है उनकी, वो आसुरी मुनि कैसे रास में प्रवेश किया उन्होंने बाद में, गर्ग मुनि वही थे आसुर मुनि। तो वो वसुदेव के पुरोहित थे, फैमिली पुरोहित, उन्होंने को भेजा कि मेरा पुत्र जो है वो वहाँ पर है, उनका जाति संस्कार नाम सब होना चाहिए। तो बोला कि ऐसा सा आतंक है, आप वहाँ बोलना नहीं, सब क्या क्या हुआ है, रात में मैं कैसे गया, क्या हुआ, ये ब्रशमानु बाबा को कुछ बोलना नहीं है आपको, मतलब नंद महाराज कुछ बोलना नहीं है, सॉरी। तो नंद महाराज के घर में गर्गाचार्य आते हैं, आप जानते हैं कि किसी को खबर नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए गुप्त रूप में गौशाला के अंदर एकदम सीक्रेटली उनका नामकरण विधि होता है, कुंडली बनती है। और गर्गाचार्य बहुत सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं भगवान के बारे में, कैसे पिछले जन्मों में ये रामचंद्र थे, उसके पहले वामन देव थे, उसके पहले नरसिंह भगवान के रूप में आए हैं, अभी परम पुरुषोत्तम अपने पूर्ण अवतार के साथ में आपके घर में आनंद देने के लिए आए हुए हैं, इस पूरा सेवा करते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। और वहाँ से निकल से गुप्त रूप में मुख्य रावली में आते हैं ब्रशभानु बाबा को मिलने के लिए। उनको रहा नहीं जाता, उनको पता है ना सब कुछ, त्रिकालदर्शी, हम जानते हैं कि इनकी जो सबसे प्रियतमा राधा रानी यहाँ पर आई हुई है, तब इतनी दूर आए तो उनको भी दर्शन करके जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो ब्रशभानु बाबा को मिले हैं, सबसे पहले बोला है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, किसी को बोलना नहीं है, ये मेरा आपके लिए सीक्रेट विजिट है, क्योंकि ये रहस्य की बातें बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और राधा रानी का पूरा वर्णन करते हैं, ये कौन है, क्या इनका इतिहास है, कहाँ कहाँ से वो आई है, गौलोक में क्या हुआ था, अरे आपकी परम भाग्येश्वरी है, आपका भाग्य उदय करेगी ये। तो वो कहते हैं कि इनका वर जो है उनका नामकरण करके मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, फिर हम विवाह का इंतजाम कर लेंगे, मतलब सगाई तो हो जाए। ऐसे क्या था ना कि लड़के के पिता को हमेशा लड़के की शादी की चिंता रहती है कॉन्स्टेंटली। तो जन्म अभी भी हुआ है तो अभी उनको मालूम पड़ रहा है कि गर्ग मुनि कुछ कह रहे हैं, तो बोले बात आगे बढ़ाएं, बोले नहीं नहीं इनका विवाह गुप्त रूप से स्वयं ब्रह्मा जी करेंगे, किसी को नहीं बताना आप। भांडेर वन में यथावकाश बाल स्वरूप में ही किशोर अवस्था प्राप्त होंगी इनकी, और ब्रह्मा जी आकर भांडेर वन में इनका दिव्य रूप से विवाह करेंगे, गुप्त रूप से करेंगे, ये रहस्य किसी को आपको बताना नहीं है, गुप्त ही रहना चाहिए। और मैंने बताया, मेरा नाम भी नहीं बोलना है, लेकिन मुझे रहाने जा रहा है कि आपके घर में श्री जी आई हैं, अवतरित हुए हैं, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ। ऐसे उनका गुप्त वार्तालाप हुआ है, गर्ग संहिता में पूरा उसका वर्णन दिया है। और फिर गर्ग मुनि जी चले जाते हैं। इस तरह से श्रीमती राधा रानी का यहाँ पर जन्म हुआ है। और एक और बात सुंदर बताना भूल गया मैं, वो ये है कि इंदुसेन और मुखारा देवी भी बड़े चिंतित थे कि बहुत साल हुए हमारी कन्या का शादी होकर, कोई संतान नहीं हुई है। तो उन्होंने बड़ी मन्नत मांगी थी, बड़े बड़े विचार किए थे। जैसे ही यहाँ पर कन्या की प्राप्ति हुई है ऐसी खबर मिल जाती है वहाँ मुखाराई में, मतलब ये तो पास में है ना, यहाँ पर इतना दूर नहीं है, नंदगांव बरसाना बहुत दूर है, लेकिन बीच में राधा कुंड की स्थान आता है ना, तो वहाँ पर मुखारा गांव में खबर पहुँचती है कि कीर्तिदा को कन्या प्राप्ति हुई है। तो वो इतनी खुश हो जाती है, और उनका जन्म तो भोर के समय का है, तो दिन में ही पता चलता है उनको कि जन्म हुआ है। तो तुरंत ही वो बैलगाड़ी के पड़े हुए एक पहियों को उठाती है, उस पर दीपक लगाती है, हरे क्या कहते हैं उसको, आरी पर, ऑन द स्पोक्स ऑफ द व्हील दीपक जले हुए लगाती है पूरे, और उसको बीच में से पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा के नृत्य करने लगती है, उसको कहते हैं चरकुला नृत्य, आज भी ब्रज में बहुत फेमस है। जैसे ही मुखारा देवी आनंद से पागल होकर वो चक्र को लेकर घुमाने लगी, सभी वहां के गोपियां इकट्ठा हुए, उन्होंने भी बैल के गाड़ी के चक्र उठाए, उन पर दीप जलाकर सब लोग नृत्य करने लगे। ऐसा अनोखा दृश्य जो है राधाष्टमी के दिन मुखारा गांव में होता है, जो मुखारा देवी ने अपने आनंद को व्यक्त किया था, अपनी पुत्री को पुत्री हुई इस आनंद में। इस तरह से फिर ब्रज में आनंद हुआ, और ब्रशभानु महाराज ने भंडार खोल दिए, सब लोग, मैंने कहा ना जैसे जो बीमार सॉरी जो गरीब थे वो धनियाराम हो गए, उनके जो गरीब थे भूखे थे वो हलवा अपूरी खाने लगे, अपने आप में सब उत्पन्न हुआ था जगह पर, सब लोग दर्शन करने आए, जो जो उनके बस में था वो जो भेंट लेकर आए। तो ब्रशभानु महाराज जो थे वो बड़े धनी थे, राधा रानी के जन्म होने की वजह से बड़े धनी हो गए थे, सारा भाग्य लक्ष्मी श्री अन्न सब उनके घर में प्रकट हुआ था, उनके पास कई प्रकार के रत्नों के अनंत भंडार थे। तो उन्होंने मोतियों के भंडार खोल दिए, हाँ सबको बांटा उन्होंने, कोई दिखाने आवना था कोई योग्य है नहीं है, सबको जो भी आए सबको भरपेट खिलाया और सबको मोतियों का दान दिया। फिर वो भर भर के मोती लेकर जा रहे थे लोग, तो आधे रास्ते में खबर मिली कि रत्नों का भंडार खुल गया है, तो सब मोती वहीं फेंक दिए और भागे वापस। तो सब लोगों ने रत्न ले लिए। तो वो लेकर भाग रहे थे, जा रहे थे, तो खबर मिली कि अभी पांचों एमरल्ड का भंडार खुल गया है, रूबीज का। ऐसे एक एक करके सब खोलते गए वो और सब बांटते गए। इसलिए कहा गया कि जो राधा रानी का जन्म हुआ था उस जन्मोत्सव के दिन पे पूरे ब्रज में सब जगह पर रत्न अलंकार छाए हुए थे, एवरीवेयर ओनली ज्वेल्स एंड ज्वेल्स एंड ज्वेल्स। और कोई परवाह भी नहीं कर रहा था, इतने प्रचुर मात्रा में वहां पर रत्न और माणिक और पांचू और हीरे सब फैल गए थे। ये राधा रानी का क्या कहते हैं उसको, लक्षण है उनके होने का, इट्स अ सिंबल ऑफ हर अराइवल, एवरीवेयर समृद्धि। और राधा रानी की एक कहानी तो मैं जरूर बताऊंगा कि राधा रानी कितनी महाप्रतापी है। राधा रानी के क्षेत्र में किसी राक्षस ने प्रवेश नहीं किया है। कंस जो है वो हर रोज गोकुल से राक्षस भेजा करता था। भागवत में तो बहुत मेन मेन राक्षसों का वर्णन दिया गया है, क्योंकि सुखदेव जी के पास समय बहुत कम था, परीक्षित महाराज को 7 डेज का लिमिट दिया गया था, इसलिए वो सब कुछ बातें नहीं कह सके। विशेष रूप से राधा रानी का चरित्र वर्णन वो कर ही नहीं सके, क्योंकि अगर राधा रानी का चरित्र वर्णन वो करते तो हो सकता था कि वो खुद बेहोश हो जाती, और अगर वो बेहोश होने के बाद कितनी देर बाद होश में आते उनको भी पता नहीं है। तो 7 दिन का कीमती समय में से अगर बेहोशी में कुछ समय निकल गया तो कैसे होगा। तो अपने आनंद के अनुभूति से अधिक संत लोग दूसरों की करुणा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मोर देन हिज ओन एक्सटेसी ऑफ थिंकिंग एंड रिलिशिंग राधा रानीज चरित्र। ही वॉज वरीड अबाउट द डिलीवरेंस ऑफ परीक्षित महाराज, सो ही कंट्रोल इज एक्सटेसी एंड केप्ट राधा रानीज चरित्र असाइड एंड ओनली टॉक अबाउट कृष्णा एंड जस्ट मैंशन हर नेम इनडायरेक्टली। तो ये जो वर्णन वो नहीं कर सके, तो गर्ग मुनि ने फिर बहुत विस्तार में गर्ग संहिता में वर्णन दिया है। तो रोज आते थे यहाँ पर, बहुत दिन फिर आतंक हुआ तो परेशान हो गए वो दोनों ने। वहाँ पर नंद बैठक है 84 खंबा, रोज़ वहाँ मीटिंग हुआ करती थी। उन्होंने सोचा कि देखो तो ऐसा है कि अभी पुत्र प्राप्ति तो हो गई है, पुत्री प्राप्ति भी हो गई है, लेकिन आतंक बहुत बढ़ रहा है उसकी वजह से, अभी दोबारा हमको अपने अपने गाँव में जाना चाहिए। तो दोनों तय करते हैं और फिर वहाँ से सब पैकिंग करके अपना राज्य पैक करके पूरा दोनों सफ़र करते हैं। तो सफ़र में वो तंबू लगाते हैं नंद महाराज छटिकरा में, और विश्वभानु महाराज तंबू लगाते हैं बसती गांव में, वो भी मुखराई से 1 किलोमीटर दूर है, राधा कुंड से भी 1 किलोमीटर दूर है बसती गांव। इतने बड़े तंबू थे उनके कि वर्णन ऐसा आता है आनंद वृंदावन गोपाल चंपू में कि दोनों के तंबू एक दूसरे को टच किए हुए थे, देवर नेक्स्ट टू इधर। लेकिन छटिकरा किधर है, वृंदावन से 6 किलोमीटर है, और वसती कहाँ है, वृंदावन से 28 किलोमीटर आज की तारीख में, हाँ फ्रॉम टुडेज ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। इतना विशाल तंबू दोनों का था, और फिर समय पर वो तंबू भी उखाड़ के आगे चलने लगे। बहुत सुंदर कथाएं हैं जिस तरह से उन्होंने अपना यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है। फिर वो शिफ्ट हो गए वहाँ पर, तो रोज की तरह यहाँ पर राक्षस आने लगे। देखे तो कोई है ही नहीं, फिर सब शहर खाली हो गया है। तो खबर मिलती जाकर कंस को कि शहर पूरा खाली हो गया है, क्या करें अभी। तो कंस अपने सेनापति को भेजते हैं, दो सेनापति दो उनके पुत्र को भेजते हैं, हाउ बुलाओ। और वो देखते हैं गोकुल में कोई है नहीं, तो आगे चले जाते हैं। लोग कहते हैं वो चले गए चले गए चले गए, तो अंदाज से बोलते हैं कि आगे अपने पुराने घर में गए होंगे। तो ये नंदगांव पहुंचते हैं हाउ बुलाओ, और वहां पर ये दो बालकों को खेलते हुए देखते हैं। अरे मिल गए मिल गए, तुरंत पकड़ जाते हैं। पकड़ते ही दोनों चारों लोग पत्थर हो जाते हैं। फिर उन पत्थरों का पहाड़ जैसे जानवर पत्थर का जो आकृति था, नंद महाराज यशोदा माई ने ये दो पुत्रों को डराने के लिए उनका उपयोग किया। हाउ बुलाओ आएंगे, चलो घर जल्दी चलो, तो भागते थे सब लोग। फिर वो भी नहीं लौट के आए, हाँ देखो जो उसको भेजते थे वो वापस आते नहीं थे, कितने भाई जितने भेजे वन वे ट्रैफिक में अटक गए, वापस आए नहीं, वो सीधे वहां से यमराज के धाम में गए। तो कंस बोला कि मैं खुद जाता हूँ, अभी देखना जरूरी है रहस्य क्या है। तो जब वो पहुंचा बरसाने में, तो बरसाना जावट चंदनगांव का ये क्षेत्र जो है बहुत विशेष क्षेत्र है, वहां पर एंट्री करते ही वो स्त्री हो गया, ही बिकेम अ वुमन, कंसनी गोपी बन गया वो। अरे सब आचार्यगण संतगण तपस्वी लोग इच्छा करते हैं कि हमको गोपी का शरीर प्राप्त हो जाए, और इसको तो ऑटोमेटिक मिल गया। लेकिन फिर भी इसकी मति जो थी भ्रष्ट मति थी, इसलिए इतनी बड़ी प्राप्ति होने पर भी दुखी रहा, रोने लगा वो, यहाँ वहाँ देखने लगा, गोपियाँ ताली पिटने लगी। अच्छा हो गया अच्छा हो गया, बड़ा रोप जमाता है, राक्षस को बेचता है, हमको तंग करता है, अच्छी अवस्था हो गई तुम्हारी, सब पाप का फल मिल रहा है तुमको अभी। तो रोता है, बोले मुक्ति करो, कुछ करो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, अब बोलो क्या करना है। बोले करना क्या है, अभी कंडे लिपना है आपको। 6 महीने तक गोपियों ने अच्छी तरह डाली पिटवा पिटवा के, उसके गोबर साफ करवा के, उसके कंडे बनवा के, सुखवा के, उसको 6 महीने तक काम पे लगाया। उसके बाद में राधा रानी का दर्शन उसको मिला है, क्योंकि बहुत रोया वो, पश्चाताप में रोया कि मैं यहाँ पर अभी दोबारा ऐसा आतंक नहीं करूँगा। तो कीर्ति मैया कहते हैं माफ़ कर दो उसको। तो राधा रानी के, राधा रानी ने उनको धमकी दिया कि दोबारा यहाँ पर आओगे तो परमानेंट कन्या बनोगे, ध्यान रखना इस बात का। चलो अभी मेरे किशोरी कुंड में स्नान करो, पुनः पुरुष शरीर प्राप्त हो जाएगा, दोबारा लौट के नहीं आना है। छलांग लगाई और पुरुष शरीर प्राप्त हो गया, उसी कपड़े में ऐसा भागा मथुरा तक, कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। ऐसा भागा पीछे मुड़के भी देखा नहीं। अगर श्री जी का मन परिवर्तन हो गया तो, माइंड चेंज हो गया तो वापस फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कथा बताई जा रही है। हाँ, भगवान ने जो गिरिराज को उठाया तो नंद बैठक में बैठकर सब ग्वाल बाल चर्चा कर रहे हैं, अरे नंद तेरा बालक तो बहुत बड़ा अद्भुत बालक है, या तो कोई देवता है, या कोई सिद्ध ऋषि है, या कोई महान आत्मा है ये। तो नंद महाराज पेट भर के हंसते हैं, बोलते अरे ये कोई देवता है, ये तो जाके घर में लोगों के पेशाब करता है, जब दूध नहीं मक्खन नहीं मिलता है तो वहां पेशाब करता है, ऐसा कोई देवता करता है कभी? हाँ, और नहीं मक्खन मिलता है तो हमारे घर में आकर, बालक गोपिकाओं के घर में जाकर बालक जो पलने में लेटे हुए हैं उनके कान में पानी डालता है, तो चिमटा निकालता है, वो रुलाता है उनको। हाँ, क्या नहीं करता है ये? और आप बोलो देवता की बात कर रहे हो, अरे ये तो आकाश में जब बादल गरजते हैं ना, इसके आवाज से डर के माँ की गोद में भाग गया था। कोई देवता डरते हैं कैसे? ये तो माँ की गोद में आकर रोता है, मैया डर लग रहा है, आकाश में देखो भयंकर आवाज आ रही है, ऐसे जोर से मतलब ठाका मार मार के पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं और आसन से गिर जाते हैं जमीन पर। इतने हंसते हैं वो, सुन के देख के सभी लोग हंसते हैं, वो भी आसन पे गिर जाते हैं और इतने लोटपोट लोटते हुए पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं। मतलब भगवान की योग माया ऐसी प्रभावशाली है कि इनको लग रहा है कि भगवान है, लेकिन भगवान ने उनको ऐसे योग माया से आवृत करके सबको भुला दिया कि मैं कौन हूँ। तो उसने में नंद महाराज कहते, अरे हाँ, वो गर्गाचार्य ने तो कहा था कि ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करेगा, धारण करेगा गोवर्धन को और बड़े बड़े संकटों की आपसे रक्षा करेगा, जो भी संकट ब्रज में आएंगे सबकी रक्षा करेंगे वो। बोला अच्छा, गर्ग महाराज कब आए थे यहाँ पर? मतलब ऐसे कॉन्फिडेंशियल बात जो है हंसी हंसी में उन्होंने खोल दी। तो सब लोग एकदम हंसी हंसी कर रहे थे, एकदम सीरियस हो गए। नंद महाराज, आप हमको अपने बिरादरी के मानते हो, परिवार के मानते हो, प्रेमीजन मानते हो, और तुमने इतने साल तक आज तक ये बात छुपाए रखी कि गर्ग महाराज यहाँ पर आए थे, उन्होंने नामकरण विधि किया था और उन्होंने ऐसे बताया था, आज बता रहे हो, कैसे मित्र हो तुम? बहुत गुस्सा होते हैं, बोलते ना अभी एक ने गुस्सा किया, दूसरे ने भी किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते, बोलते हैं नंद बाबा को बिरादरी से हद पार करो, आउटकास्ट हिम। तो भाई बड़ी एकदम मामला एकदम गंभीर हो जाता है, सडनली बिकम वेरी सीरियस, यू नो, सडनली अभी ग्वाल बालों की कम्युनिटी डिवाइड हो रही है। तो ब्रजभानु बाबा खड़े होते हैं, उनको परम मित्र है नंद बाबा उनके, उनको पता है उनकी क्या स्थिति थी, क्योंकि उनके घर में भी गर्ग मुनि आए थे ना, उनको पता था कि कैसे सीरियसली और कैसे गुप्त रूप में आए थे, सब उनको पता था बैकग्राउंड क्या है इसका। तो बोले ऐसा नहीं है, देखो समस्या ऐसी थी, कंस का आतंक था, रात के समय पर उनको लेके आए थे, बड़े गुप्त बात थी और वो रहस्यमय थी, और आप इसका बुरा मत समझना, गलत मत समझना, ये ऐसी समस्या थी इसलिए ऐसे ऐसे उन्होंने बताया नहीं, मुझे सब पता है। बोला अच्छा, तो नंद का पक्ष लेता है, चलो इसको भी हद्दबार कर दो, आउटकास्ट हिम ऑल्सो, जो जो पक्ष लेता है सबको हद्दबार कर दो। और मामला गंभीर हो गया, हाँ नंद बाबा को भी, ब्रजभानु महाराज को भी हद्दबार करने जा रहे हैं। तो तीसरा एक ग्रुप खड़ा हो गया ब्रजवासियों का, उन्होंने कहा अरे इनको मत हद्दबार करो, इनकी कन्या है ना ये महाप्रतापी कन्या, इनकी इनकी महाप्रतापी कन्या के महाप्रताप से कंस का हिम्मत नहीं हुआ है बरसाने में आने का आज तक। तब जाकर वो तीसरे ग्रुप ने ये कहानी सुनाई सब लोगों को मिलकर कि कैसे कंस आया था और कैसे कन्या बन गया, 6 महीने तक कंडे लिपवाए, कैसे श्रीजी ने धमकी दिया उंगली दिखाकर, और आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई यहाँ पर, इसलिए आप लोग यहाँ पर आनंद से डोल रहे हैं नंदगांव बरसाने में। तो फिर सब लोग का गुस्सा शांत हुआ, भाई कोई हद पारी नहीं होती यहाँ पर, सॉरी सॉल्व राइट, एवरीथिंग इज फाइन। तो ये राधा रानी का प्रताप है। कृष्ण भगवान को लड़ना पड़ा हर समय, राक्षस को मारना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी उनके पीछे, राधा रानी के भय से तो आ ही नहीं रहा उधर वो। आ ही नहीं पाया। तो राधा रानी का ऐसा प्रताप है। कल महाराज जी ने बताया ना कि वो गोवर्धन के नीचे सब चर्चा हो रही है, अरे कितना अच्छा हुआ विश्वकर्मा मैया कह रही है, कितना अच्छा हुआ, अरे मैंने जो 100 पद्मगंधा गायों को अलग से परवरिश किया था ना, अलग से पद्मगंधा घास को खिलाकर उनको परवरिश किया था, उनके दूध को भी कमल की खुशबू आती थी, ऐसे दो सुंदर सुंदर दूध का मैंने उनको मक्खन घी संदेश बनाकर खिलाया था, देखो आज काम आ गया ना, देखो कितनी शक्ति उसके अंदर है, देखो खड़ा है उठा के। बेचारी बोल रही है, अरे तो तुमने सुबह से पकड़ा है, हाथ दर्द हो गया रहेगा, हाथ तो चेंज करो कम से कम, फिर मैं थोड़ा मालिश करूंगी तुम्हारे इस हाथ को, तो सुबह से तुमने दूध भी नहीं पिया है, थोड़ा दूध मक्खन खा लो, थोड़ा अच्छा रहेगा, भूखे पैसे होंगे तो कैसे पकड़ के रखोगे उसको। फिर जो महाराज ने बताया कि मैं प्रार्थना किया कि राज आप कृपा करके लाइट बने रहो, हैवी मत बनो। तो ग्वाल बाल सुन रहे हैं बात को, बोले मैया को पूरी तरह जानकारी नहीं है, इनको लग रहा है कि दूध पी के शक्ति मिल रही है, लेकिन इनको असलियत पता नहीं है। असलियत यह है कि मैं हम लोग सुदामा सब मिलकर रोज उनके साथ कुश्ती खेला करते थे और कुश्ती में उनको रोज हराया करते थे, लेकिन ट्रेनिंग उनको हमने अच्छा दिया था। इस ट्रेनिंग की वजह से वो इतने हारे हमारे से, कोई बात नहीं, लेकिन मजबूत बने, देखो आज काम आया ना सब ट्रेनिंग, देखो उठा रहे बढ़िया से। तो बहुत अंदर बहुत वार्तालाप हुआ है, गिरिराज के छत के नीचे ठाकुर जी की इच्छा से पांचों रसों के भक्त इकट्ठा हुए थे, अलग समय पर वो केवल एक एक रस का आनंद एक एक जगह पर लिया करते थे समय के अनुसार, लेकिन गोवर्धन लीला ऐसी अद्भुत लीला है कि 7 दिन 7 रात तक पांचों रस इस प्रकार सुंदरता से मिश्रित होकर सबको उन्होंने साथ में आनंद लिया है। साथ में गोपियां भी खड़ी है, साथ में ग्वाल बाल भी है, साथ में गाय भी है, मोर भी है, तोता भी है, मैया भी है, बाबा भी है, सब लोग साथ में खड़े हैं। तो ये ग्वाल बाल की बात सुनकर गोपियां हंस रही है, वो कह रहे इनको कुछ पता ही नहीं है, सब बालक है, गंवार बालक है, इनको क्या मालूम। अरे राधा रानी उनको देख रही ना तिरछी नजर से, उसमें उनको बल प्राप्त हो रहा है। तो ये बोले नहीं नहीं ये हमको मंजूर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे देखो सबको दिखाई पड़ रहा है, हाथ हाथ में गोवर्धन पकड़ के रखा है, ये नजर का कितना संबंध आ गया इसके अंदर। बोला देखो 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 वो कहाँ देख रहे हैं और वो कहाँ देख रही है। तो देखते हैं कि तो वो तिरछी नजर से उनको देख रहे हैं और तिरछी नजर से वो भी इनको देख रही है, वहां से बलराम भी देख रहे हैं, तो कृष्ण देख रहे हैं कि बलराम देख रहे हैं, इसलिए वो नजर को झुका लेते हैं। तो फिर इधर बहस जो है वो रुक जाती है, बोले कोई बात नहीं इसका हम लोग रिजल्ट बाद में करेंगे, ये बात अभी अधूरी छोड़ देते हैं बिना रिजल्ट की। फिर गोवर्धन की लीला समाप्त होती है और फिर भगवान ऐसे उसको वापस रखते हैं अपनी जगह पर, और फिर उसको मिलने के लिए राधा रानी को मिलने के लिए सब ग्वाल बाल पहुंचते हैं। अरे तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारी नजर में इतनी शक्ति है कि वो शक्ति कृष्ण को मिल रही थी तुम्हारे कटाक्ष से, और उसके वजह से गिरिराज जी वो धारण कर रहे थे 7 दिन 7 रात तक, अभी दिखाओ। तो सब लोग श्री जी को लेके आए, बोला श्री जी आ जाओ। तो उनको प्रविष्ट वन में लेके गए, वहाँ पर श्री जी ने कहा अभी दिखाऊँ, ठीक है। उन्होंने अपनी नज़र जो है वो गिरिराज के बेस पे रखी, फिर नज़र को ऐसे उठाया, वो गिरिराज आकाश में चला गया, ऐसे देखती रही और गिरिराज आकाश में, बस हो गया रख दूँ नीचे, हाँ रखो। इस तरह से श्री जी ने साबित करके दिखाया कि जो तुम्हारे ठाकुर के हाथ में नहीं है मेरे नजर में है। तो सब लोग बाल बाल दंडवत प्रणाम के, हाँ भाई मानते हैं। तो श्री जी में ऐसी दिव्य शक्ति है, वो कृष्ण की शक्ति का स्रोत है, कृष्ण के जो उत्साह है उसके अवगम श्री जी हैं, राधा रानी है। तो वो श्री जी महारानी यहाँ पर अवतरित हुई है, इस भूमि को उन्होंने पुनीत किया है, इस भूमि पर उनके चरण चिन्ह सब जगह विराजमान हैं, सब लोग इस भूमि को आप चरण वंदन करो, यहाँ पर श्री जी ने जन्म लिया है। और कितना टाइम हो गया अभी, ठीक है अभी आपको पता नहीं आगे हम जाएंगे कि नहीं, लेकिन वहाँ की कथा आपको बोल देते हैं। तो हम लोग अभी महावन में बैठे हैं, महावन जो है वो अधिवन है, अधिवन यानी अधिवन के अंदर प्रतिबन उपबन और बन बहुत सारे होते हैं, अधिवन इज अ बिग एंटिटी। तो सब लोग मिलकर महामंत्र के माँ गोकुल अधिवन मंत्र को उच्चारण करेंगे, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, सब लोग हरे कृष्णा। गोकुल अधिवन के गोकुल चंद्रमा जी अधिदेवता हैं, ये बौधायन संहिता में लिखा है। ओम क्लिम
गोकुला
अधिबना अधिपाया गोकुल चंद्रमसे स्वाहा। और 5 वर्ष की तक आयु तक यहां पर भगवान ने लीला किया था, इसलिए वो मंत्र भी है उसका। पंचाब्द रूपिणम कृष्णम गोकुलेश्वरम ईश्वरम। पूरी आवाज कम आ रही है आपकी। पंचाब्द रूपिणम कृष्णम गोकुलेश्वरम ईश्वरम। ध्याये ध्यायेद उत्तरा कोटिभी यात्रा सांगा समर्थिता। और भी मंत्र हैं। महावन को महावन ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि एक महान नाम के ऋषि थे। महान नाम के ऋषि ने यहाँ पर 5,000 साल तक तपस्या किया था, इसलिए ये तपस्या पीठ बन गया और इसलिए इस वन का नाम महावन पड़ा। इसका मंत्र है, बोलिए, महान महर्षि नामा यत्रा तेपे महातप वर्ष पंच सहस्रेस्तु महावना नमोस्तुते। हम उस वन को महावन को प्रणाम करते हैं जहां पर महान ऋषि ने 5,000 साल तक तपस्या किया था और फिर भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया है। और उसका भी मंत्र है कि ये भगवान का क्रीड़ा स्थल भी है, तपस्या पीठ भी है, त्रैलोक्य को रमण कराता है क्योंकि भगवान ने यहाँ पर बाल रूप में लीला किया है। सत्यव्रत मुनि नहीं, एक और मुनि है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं केवल नंद बाबा को मानता हूँ क्योंकि नंद बाबा के लिए पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांडेश्वर गोलोक नायक बालक बनकर उनके आंगन में रेंग रहे हैं। पर ब्रह्म हैज बिकम अ स्मॉल बेबी क्रॉलिंग इन द कोर्टयार्ड ऑफ नंद महाराज, हाउ ग्रेट ही मस्ट बी, सो आई ओनली वर्शिप हिम एज माई वर्शिपेबल लॉर्ड। तो तपह पीठ, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, तपः पीठ नमस्तुभ्यं कृष्ण क्रीड़ा वरप्रदा त्रैलोक्य रमण क्षेत्रम महावना नमोस्तुते। इस वन में इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वगोषम निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेक्षिताग्नेषु भक्तैर्जिता त्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्ति वन्दे। यहाँ पर भगवान ने बाल रूप धारण करके सारे गोकुलवासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया। इतना आनंद दिया सब लोग उनको देख देख कर ही आंखों से अश्रु बहा करते थे। रोहिणी यशोदा माई, हाँ, वो सुंदर सुंदर उनको रेंगते हुए बालकों को पीतांबर नीलांबर धारण करके चंदन अगुरु कस्तूरी लगाकर मोर पंख धारण करा के दोनों को भेजते थे। तो ये रेंगते रेंगते जाते थे गौशाला में और गौशाला में गोबर और गोमूत्र का बहुत सुंदर चिकना मिश्रण हुआ करता था, तो हर गौशाला में होता है। तो ये क्या करते थे, धीरे धीरे चलकर जाते थे और बछड़ों के पूंछ को पकड़कर उसके बल से खड़े हो जाते थे। जैसे आप सोच सकते हैं, देखो छोटे से बालक हैं, उनको चलने को नहीं आ रहा है अभी तक। ऐसे कहते हैं कि जो पूरी दुनिया चलाते हैं वो यशोदा माई का हाथ पकड़कर चलना सीख रहे हैं। जो दुनिया को दिव्य ज्ञान देते हैं, भगवद गीता का ज्ञान उन्होंने दिया सब दुनिया को, वो यशोदा माई और रोहिणी के साथ तोतले तोतले बोल बोलने को सीख रहे हैं, है ना। तो उनको चलने को भी नहीं आ रहा है, फिर वो बछड़ों के पूंछ को पकड़कर उसके सहारे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बछड़े की पूंछ ऐसे खिंच जाती है तो बछड़ा बिधर जाता है और वो भागने लगता है, और जैसे ही भागने लगता है ये लोग पूंछ नहीं छोड़ते हैं तो क्या होता है, गिर जाते हैं और उनका पेट जो है वो स्केटिंग के ग्राउंड पे आ जाता है, जो मुलायम मक्खन जैसा गोबर और गोमूत्र का मिश्रण है, और बछड़ा पूरा गौशाला में भाग रहा है, और उसके पीछे कृष्ण बलराम दोनों दो बछड़े के पीछे ऐसे पूछ पकड़ कर पूरा गौशाला घूम रहे हैं। और रेणी माता आते हैं, यशोदा दीदी जल्दी जल्दी आ जाओ, देखो 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 कितना सुंदर दृश्य है। और दोनों भाग भाग के आके देखते हैं कैसे गौशाला में बछड़े का पूछ पकड़ के पूरा उनका शहर चल रहा है। ऐसा आनंद उन्होंने दिया है। आपका बालक भी अगर ऐसी अवस्था में आता तो कितना आनंद आएगा आपको देख के उसको। तो क्या कह रहा था मैं, भूल गया, समथिंग आई वाज सेइंग, एनीवेज कोई बात नहीं। तो गोकुल, हाँ नहीं भूल गया शायद, कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं। तो रमन रीति जो है उसके बारे में आपको बताएंगे, फिर कथा समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप स्कंद पुराण में दिए हुए रमन रीति के मंत्र को बोलिए। बाला राम सुखा श्रेष्ठ रमणा कृष्ण चेष्टिने रमणाख्याय वनाय च रम्याय नमोस्तुते। देखो क्या है, सब रम्य 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 ही है इसके अंदर। इसके अंदर केवल आनंद और आनंद और आनंद ही है, और कुछ है ही नहीं। बहुत दीर्घ और रमणीय स्थान है ये 22 योजन लंबा है गोकुल अधिवन। इसके अंदर रमण वन आता है, और इसका भी मंत्र है गोकुल का। गोलोक रूपिणे तुभ्यम, क्योंकि ये गौलोक जैसा ही है, गौलोक और गौलोक गोकुल में कोई अंतर नहीं है। साक्षात गौलोक जो है वो गोकुल में अवतरित हुआ है। गोलोक रूपिणे तुभ्यम गोकुलाय नमो नमः। ये बड़ा दीर्घ और रमणीक है। अति दीर्घाय रम्याय द्वाविशतयोजनायते। द्वाविशत का मतलब 22, विशत यानी 20, द्वाविशत यानी 22। द्वाविशतयोजनायते, तो ऐसे सुंदर रमण रीति क्षेत्र में बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर, बहुत ही मधुर कथा है। दुर्वासा मुनि गए थे, आप जानते हैं दुर्वासा मुनि शिवजी का अंश अवतार है, तो बड़े तपस्वी हैं, लगता है तो बड़े क्रोधी और शाप देने वाले, लेकिन सब जगह ब्रज में उनका प्रवेश है। ब्रज लीला के अंदर हर जगह पर बरसाने भी आए हैं, इधर भी आए हैं, रमन रीति में भी आए हैं, जमुना पार भी आए हैं, हर जगह पर उनका भगवान की लीला में सहभाग है। तो तभी भगवान कुश्ती लड़ रहे थे रमन रीति में, हाँ मल्ल लीला कर रहे थे, सब ग्वाल बाल मिलकर कुश्ती खेल रहे थे, और सभी ग्वाल बाल कृष्ण बलराम सहित उनके सारे श्री अंगों में पूरी धूल जमा हो गई थी सब जगह पर। श्रीमन मदन गोपाल उठंतम बाल कैस परस्परम प्रयुद्धतम बाल केली मनोहरम। परस्पर युद्ध कर रहे थे, हाँ क्या कहते, मल्ल युद्ध खेल रहे थे। नारद मुनि दुर्वासा मुनि देखते, अरे धूली धूसर सर्वांगम वक्र केशम दिगंबरम, मतलब क्या, सब शरीर धूली से भर गया था, सर्वांगम सब शरीर पर, और वक्र केशम सबके बाल यहाँ वहां बिखरे हुए थे, सब बालों में भी धूल थी। और कैसे थे वो दिगंबरम, मतलब क्या, वस्त्र वस्त्र कुछ पहना नहीं था, ऐसे ही डोल रहे हैं। धावंतम बालक साध्यम हरिम भिक्षस मिस्मितः, सब लोग हंस रहे हैं, यहां वहां भाग रहे हैं, गिर रहे उठ रहे हैं, सब धूलि से मरे हुए हैं, भरे हुए हैं। तो दुर्वासा में सोच रहे, ये क्या ईश्वर है, हमने सुना था ये तो परमेश्वर है, गौलोकेश्वर है, ऐसे कैसे हो सकता है। गौलोकेश्वर इतनी आम साधारण ग्वाल बालों को जो गाय चराते हैं, कोई ज्ञानवान होता नहीं, उनको गोबर में और गोमूत्र में लिप्त रहते हैं हमेशा, उनके शरीर से गोमूत्र की बदबू आती रहती, ऐसे लोगों के साथ में नाच रहे, वो निर्वस्त्र होकर धूल में पड़े हुए हैं, कोई श्रृंगार बचा नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सोच ही रहे हैं, ऐसे सोच ही रहे हैं। हाँ ये ब्रज में ना कब क्या होगा, कुछ भरोसा नहीं इसका। अभी देखो रो रहे थे कृष्ण कृष्ण महाभाग करके, वो वर्षा हो रही भयंकर आकाश से, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, वो बोल रहे चलो मेरे साथ, तो गए उसके पीछे, पता नहीं फिर भी क्या होने वाला है। तो पूछा उसने, अरे भाई क्या करने वाले हो बता तो सही। बोले भाई गिरिराज को उठाने वाला है। बोला अच्छा, इतने से तुम 7 साल के, इसको उठाओगे कैसे, हम यकीन करें इसके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, सब ग्वाल वालों के सामने एक बड़े मोटे कदम के वृक्ष को ऐसा ऐंठ दिया पूरा, जैसे हम लोग साड़ी ऐसे कपड़ा धोते हैं ना, तो सब क्या मतलब बनता ला, पिलना पिलने क्या कहते हैं इसको हिंदी में, स्क्वीज करते उसको, निचोड़ दिया एक पूरा कदम के पेड़ को ऐसा उठाकर, आंख पहले तो उखाड़ दिया पूरा और फिर ऐसा पूरा ट्विस्ट कर दिया उसको। तब ग्वाल वालों को लगा भाई कुछ कर सकता है ये। उसके बाद में सबके आंखों के सामने गिरिराज को उठाया, किसी को पता नहीं था कि क्या करने वाला है बालक। इसके कहने पर इतना सब किया, इतनी भनगोर वर्षाओं के इंद्र का कोप आकर्षित किया, अभी क्या करेगा पता नहीं, लेकिन श्रद्धा रखेंगे ना तो भगवान आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। श्रद्धा से जीवन में आप अपने संकटों को सामना कीजिए, कुछ भी होगा अगर आप भगवान का नाम लेते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, आपको यकीन होना चाहिए आपके जीवन में ऐसी कोई घटना उनके मर्जी के बिना और आपके अच्छे के लिए ना होते हुए होगी नहीं। नथिंग विल हैपन इन योर लाइफ विच इज नॉट इन हिज कंट्रोल एंड विच इज नॉट गुड फॉर यू एंड नॉट प्लान्ड बाय हिम। तो ग्वाल वालों का जीवन ऐसा ही था, इंद्र का पूजा कैंसिल भी किया इनके से, इनसे इनके वजह से किया, और उनके बाद में जो हो रहा है तब कंप्लेन नहीं कर रहे हैं तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी बात बेकार में आनी, हम लोग ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना नटखट बालक हो आपको ज्ञान नहीं है कुछ, इंद्र की पोजीशन मालूम नहीं आपको, और आपने हमसे इंद्र का पूजा रद्द करवाया, तो देखो क्या हो रहा है ये तुम्हारी वजह से, ऐसे किसी ने नहीं बोला उनको। इतना सब होने पर भी लॉजिकली आप बोल सकते थे अभी तुमने ही सब इतना सब गड़बड़ किया है तो भी उसको सुधारो, ऐसा भी नहीं कहा, उसी का सहारा लिया पूरी तरह से। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान ने फिर ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाया जो उसके पहले किसी को पता नहीं था, आज सबको पता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन तब नहीं पता था। तो ऐसे अचानक दुर्वासा सोच ही रहे हैं कि ऐसे कैसे ईश्वर है हमारे, तो अचानक वो भागते भागते जो है ना वो सबके बीच में से कृष्ण भगवान भागते भागते इनकी गोद में कूद गए, धड़ाड़ करके एकदम गोद में आके कूद गए और जोर जोर से हंसने लगे। उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे बालक मेरे गोद में, अभी करूँ क्या इसका मैं, तो जोर से हंसने लगे, तो जोर के सांस में दुर्वासा मुनि उनके नाक से शरीर के अंदर चले गए, दुर्वासा मुनि गॉट सक्ड इन इन नॉस्ट्रिल। फिर क्या हुआ, दुर्वासा मुनि ने बड़े डर से, बिना डर के बच्चा आ गया गोद में, तो उनके हाँ चाहे एक भूल गया बताने को, बिना डर के गोद में आ गया। देखो दुर्वासा मुनि का डर का सवाल क्यों होता है, दुर्वासा मुनि को देख के लोग डरते हैं, उनको पता था ये कि हमको लोग देख के डरते हैं, खास करके बालक लोग, तो ये बालक बिना निडर होते हुए बिना डर के सीधे गोद में आया और दाढ़ी को खींच खींच के खेलने लगा और जोर जोर से हंसने लगा, और हंसने की वायु का जो होता ना आवागमन उसके अंदर वो खींच गए शरीर में उसके। और फिर क्या हुआ, दुर्वासा मुनि ने कहा कि बड़ा ढीठ बालक है, और देखते देखते ढीठ बालक है, उद्दंड है, इसका क्या किया जाए, सोचते सोचते खुद ही उसके शरीर में घुस गए, और क्या देखा, एक बड़ा ब्रह्मांड देखा, अनेक ब्रह्मांड देखे, अनेक जंगल देखे, अनेक खेत देखे, अनेक पर्वत देखे, उसमें ये विचार विहार करने लगे। उसके अंदर एक बड़ा अजगर दिखाई पड़ा उनको, अजगर के बारे में सोचने के पहले अजगर ने उनको अपनी सांस से अंदर खींच लिया, वो अजगर के शरीर के अंदर चले गए। फिर अजगर के शरीर के अंदर क्या हुआ, अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़े उनके अजगर के शरीर के अंदर। फिर उस अजगर के शरीर के अंदर जो अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़े उसमें से एक ब्रह्मांड में उनको एक श्वेत पर्वत दिखाई पड़ा, बड़ा श्वेत पर्वत। तो बोले कहाँ फंस गया मैं, कहाँ गया था जंगल में खेलने खेल देखने के लिए और कहाँ पे आ गया, चलो निकलो इसमें से बाहर। तो बाहर निकलने की तपस्या किया उसने, कितना तपस्या किया मालूम है, 100 करोड़ ईयर्स, 100 करोड़ साल तपस्या किया अजगर के पेट के अंदर के श्वेत पर्वत पर। फिर उस ब्रह्मांड का प्रलय काल आया, फिर उस प्रलय काल में इतनी भयंकर वर्षा हुई, जैसे महाराज ने बताया ना कल, प्रलय काल में क्या होता है, पृथ्वी एक महान समुद्र बन जाती है, उसके आगे का वर्णन ऐसा है कि 100 किलोमीटर तक पृथ्वी पर सब दिशाओं से पानी जमा होता है, इट बिकम्स अ वाटर बॉल 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम देयर एंड बीच में पृथ्वी का व्यास डायमीटर, इतना बड़ा पानी का गोला बनता है। उसमें ये डूबने लगे, कौन, दुर्वासा मुनि। जब डूबने लगे तो तपस्या से प्राप्त किया हुआ सारा स्मृति शक्ति भी खत्म हो गई उनकी, ही फॉरगॉट एवरीथिंग, सब भूलने लगे। और उस पानी के अंदर उनको और एक ब्रह्मांड दिखाई दिया, वो ब्रह्मांड के अंदर वो ब्रह्मा जी के एक दिन तक रहे, मतलब कितने साल हो गए बताओ, 43,20,000 ईयर्स इज वन कल्प, इन टू 1,000 इज ब्रह्माज 12 आवर्स इंटू 2 इज 24 आवर्स इज वन डे, घर में जाके गणित करना इतना इसमें 1000 मिनी प्रलय होते हैं। तो एक दिन ब्रह्मा का पूरा वो जल के अंदर जो ब्रह्मांड दिखाई पड़ा उसके अंदर रहे वो, फिर उसके अंदर उनको एक होल नजर आया, एक छिद्र, उसमें से वो बाहर निकल गए। जब बाहर निकल गए तो अनेक ब्रह्मांड नजर आए, बहुत बड़े बड़े। फिर उसके आगे चले गए तो उनको नदी मिली, विरजा नदी, उसको भी पार किया उन्होंने। हाँ, और उसको पार करके वैकुंठ चले गए, अनेक वैकुंठ थे ब्रह्म ज्योति के अंदर, प्रकाशमान समय था। उसको पार करके गौलोक में गए और गौलोक में उनको राधा कृष्ण का दर्शन हुआ। राधा कृष्ण उनको देखकर हंसने लगे, कृष्ण भगवान भी उनको देखकर हंसने लगे, और जैसे हंसे तो भगवान ने हंस के सांस बाहर छोड़ा, जब हंसना बंद किया तो सांस अंदर लिया, तो ये पूरे उनके अंदर चले गए वापस। और जैसे अंदर चले गए सीधे रमन रति बाहर निकले इतना समय बीता देखो आप। और क्या देखा, तो वही कृष्ण भगवान। हाँ, क्या धूली धूसर सर्वांगम वक्र केशम दिगंबरम वही वर्णन सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं। अभी उनके मन में प्रश्न नहीं है कि ये कौन है पहले ये प्रश्न था कि कौन है ये, इतना सारा यात्रा करने के बाद में कैसे उनको भूल जाएंगे कि इतना सारा लंबा सफर किया, इतना तपस्या किया 100 करोड़ साल तक। हाँ, तो उसमें इस रमण रीति क्षेत्र में दुर्वासा मुनि ने श्री नंदनंदन स्तोत्र का पठन किया है, स्वयं उसको कंपोज करके उसका गायन किया है। ये रमण रीति क्षेत्र का महात्म्य है कि यहाँ पर बैठकर रमण रीति में स्तोत्र को वर्णन करना चाहिए। इसमें संक्षिप्त में कहा जाए तो वो उनकी आंखें कैसे कमल जैसी है, कैसा उनका रंग जो है मेघ वर्ण का है, कैसे उनके शरीर की कांति दुनिया को आभा दे रही है, कैसे मुरली बजा रहे हैं, कैसे मोर पंख धारण किए हुए हैं, कैसे पीताम्बर धारण किए हुए हैं, इसके प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है, ऐसा पूरा वर्णन दुर्वासा मुनि करते हैं नंदनंदन स्तोत्र के अंदर। और यहां से फिर पूरी अनुभूति प्राप्त करके दुर्वासा मुनि फिर बद्रिकाश्रम गए हैं आगे की तपस्या करने के लिए। ऐसे सभी ऋषि मुनियों को, ध्यानियों को, तपियों को, सिद्धों को, सबको चकरा देते हैं हमारे कृष्ण भगवान। हाँ, बालक बन कर आते हैं और सब आनंद यहाँ पर सबको देते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। जय श्री राधे। थोड़ा सा आपको राधा रानी के नाम के बारे में महिमा सुना जरूरी है, क्योंकि राधा रानी का जो चरित्र है वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, उसका सार यही है कि श्री कृष्ण भगवान को अनंत योगी भी अनंत जन्मों तक भी तपस्या करके प्राप्त नहीं कर सकते, बड़े दुर्लभ है वो, इतना आसान नहीं उनको प्राप्त करना। बड़े के इंग्लिश में कहते हैं इज ए वेरी श्रूड लवर। हाँ, अनन्यश्चिंतयन्तु माम किसी और का ध्यान नहीं करना है आपको, अनन्य उनका चिंतन करना है, सब कुछ सरेंडर करना है, और कोई प्रेमी नहीं होना चाहिए आपका, केवल एक ही प्रेमी होना चाहिए, वो भी एकाग्र रूप से समर्पित रूप से उनको प्रेम करना है, तब जाकर कुछ कुछ बात बन सकती है जो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर राधा रानी का नाम कोई पुकारता है तो वो परम भगवान जिसके पांव के किरण भी किसी योगियों को अनेक जन्मों के तपस्या के बाद भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो पूरे भगवान, हाँ, सशरीर सदेहम उस भक्त के पीछे पीछे भागने लगते हैं, इतनी राधा नाम के अंदर शक्ति है। रा उच्चारण करते ही सब प्रकार के दुख कष्ट मिट जाते हैं। और हमारा सबसे बड़ा समस्या क्या है, गर्भवास, बार बार हम माताओं के गर्भ में प्रवेश करते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार हम लोग अलग अलग माताओं के, अलग अलग योनियों के माताओं के गर्भ में प्रवेश करते हैं और पुनः 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 जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख जो है भोगते रहते हैं। तो रा का उच्चारण करते सब दुख नष्ट हो जाते हैं और धा उच्चारण करते ही गर्भवास नष्ट हो जाता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इन टू द वूम्ब ऑफ मदर इज फिनिश्ड। और धा उच्चारण करते ही भगवान तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगते हैं। ससंभ्रम संभ्रम ससमृत, मतलब जैसे कि मानो कंफ्यूज हो गए, ऐसे मोहित होकर उस भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। तो हम लोग को ऐसी इच्छा नहीं कि उसने हमारे पीछे भागे, हम लोग को यहाँ से निकलना है, बस शॉर्टकट चाहिए। समय बहुत कम है, बुद्धि कम है, गुण कम है, वातावरण अनुकूल नहीं है, सब गलत है। ऐसे भयंकर अवस्था के अंदर हमको अगर बाहर निकलने का शॉर्टकट मिल जाए तो हमको चाहिए, वी वॉन्ट इट। इसलिए पुकारो जय जय श्री राधे। राधा रानी बड़ी भोली हैं, वे उनका नाम उच्चारण करते हैं तो तुरंत उन पर कृपा कर देती है। वो ऐसा नहीं बोलते अनन्य चिंतन तो माम, जिन्हें जो भी उनको पुकारता है असहाय होकर वो तुरंत उनकी हो जाती है। और क्या करती है, तुरंत कृष्ण भगवान को सिफारिश करती है, देखो ये कितना अच्छा भक्त है, इसको स्वीकार कर लो। तो जो भगवान उनकी ओर मुड़कर भी देखते नहीं कभी, वो तुरंत अपना कृपा कटाक्ष उस भक्त पर देते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। तो राधा रानी के माध्यम से जब हम कृष्ण को मिलने का प्रयास करेंगे तो उनको मिलना बड़ा आसान हो जाता है और उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। स्वयं कृष्ण भगवान जमुना तट पर बैठकर कालिंदी तट पर पद ज्योति ध्यान पर गम्य राधा राधा द्वयाक्षरी नाम का उच्चारण करते हैं, यही उनकी साधना है। कृष्ण भगवान ही साधना करते हैं, एकांत में बैठकर सदैव हृदय में और जिह्वा पर राधा रानी का द्वय अक्षरी नाम का उच्चारण करते रहते हैं, ये उनकी साधना है, ये उनका साध्य है, राधा रानी उनका इष्ट है। इसलिए हम सब लोगों को राधा रानी का नाम पुकारना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने यही नाम उनको हरे के रूप में दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। मतलब गौलोक के अंदर क्या है, गौलोक पूरा राधा रानी के प्रेम से बना हुआ है। गौलोक का सार ही केवल राधा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो गौलोक का सार है, उसी को गौलोकेर प्रेम धन कहते हैं। और वो जो प्रेम है राधा रानी का, वो भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र के युगल मंत्र, मतलब महामंत्र में डालकर उसको एनकैप्सुलेट करके आप सबको प्रस्तुत किया है। जो राधा रानी का प्रेम केवल विशेष वर्गों के भक्तों के लिए उपलब्ध था, वो सभी वर्ग के भक्तों के लिए उपलब्ध कर दिया। दैट विच इज ओनली अवेलेबल टू स्पेशल क्लास ऑफ पीपल लाइक गोपीज, दैट हैज बीन मेड अवेलेबल बाय गौरांग महाप्रभु टू ईच एंड एवरीबडी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्टिंक्शन ऑफ सिचुएशन। पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान, किसी की योग्यता नहीं देखी, ना जन्म देखा, ना गुण देखे, ना एजुकेशन देखा, ना वर्ण देखा, ना जाति देखी, ना भाषा देखा, कुछ नहीं देखा, स्थान भी देखा नहीं कि गटर के बाजू में खड़ा है कि दुनिया में खड़ा है। सब जगह पर सब स्थिति में एक ही कृपा से, यही राधा रानी का ही स्वरूप है। वो कृष्ण भगवान तो जरूर है लेकिन भाव तो उनका ही लेकर आए, इसलिए वो दयालु हो गए हैं। पहले जमाने में क्या कहते थे, सर्वधर्मम परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, तब ऐसा नहीं बोला तब प्रेम दूंगा, हाँ अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पाप की मुक्ति करा दूंगा, आगे के बाद आगे बोलूंगा, इतना ही बताया। वही जब राधा का भाव स्वीकार किया तो क्या कर रहे हैं, पात्रे अपात्रे ना देखिला ना दाखिला स्थानीय स्थान, सबको बांट रहे हैं। वही गौलोक का धन राधा रानी का प्रेम जो है वो सब हमारे लिए उपलब्ध है। वो परमोच्च आनंद जो भगवान ने गोपियों को दिया वो हरे कृष्ण माध्यम मंत्र के माध्यम से हमको उपलब्ध है। उसमें भी कृष्ण का नाम उच्चारण करने के पहले हरे का उच्चारण होता है, जब हरे उच्चारण होता है तो कृष्ण के भी कान खड़े होते हैं, तब हम कृष्ण को पुकारते हैं। किंतु कृष्ण के कान कहीं और दिशा में होते हैं, पहले हरे बोलेंगे तो कान हमारी दिशा में आते हैं, फिर हम उनको पुकारते हैं। इसलिए भगवान के नाम का जप जो है वो ना गायन है ना जप है, वो केवल पुकारना है, संबोधन। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट सिंपली चैंटिंग फिनिशिंग 16 राउंड्स, ऐसा नहीं है। वो हमको पुकारने का मौका दिया है उनको, इसलिए हर जप जो हमारा है वो पुकार होनी चाहिए, इट हैज टू बिकम अ कॉलिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, ये यात्रा आपकी भगवान के नाम के प्रति अधिक आकर्षण, अधिक प्रेम, अधिक रुचि आसक्ति प्राप्त होने के कार्य से संपन्न हो। हरे कृष्णा।